따라 그러지.
저게 웃네.
असंख्यात प्रदेशी जीव जब बड़ी अवगान से निगोद या केंद्रीय में जाता है तब उसके धनत्व परिणाम में कुछ बदलाव होता होगा।
काय के परिणाम में
धनत्व
धनत्व
नहीं, किसका प्रश्न है वो बताए। घनत्व का क्या मतलब है, आप क्या पूछना चाहते हैं? घनत्व यहाँ पर आत्मा में कहाँ से घनत्व आ गया? हाँ जी हाँ जी, नहीं ऐसा कोई डेंसिटी का कोई प्रश्न नहीं है इसमें। देखिए इनका ये प्रश्न है कि कोई बड़ी हाथी की अवगाहना से कोई चींटी की अवगाहना में कोई जीव जाएगा तो वो तो इतना बड़ा था ना, तो अब वो छोटे में जाएगा तो उसका घनत्व तो ज्यादा बढ़ जाएगा उसके प्रदेशों में, ऐसा कहना चाहते हैं आप? देखिए इसमें इसमें ये प्रश्न नहीं है क्योंकि आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है और संकोच विस्तार की शक्ति के कारण से उसको छोटी अवगाहना में कोई बहुत ज्यादा उसको घनत्व करना पड़े और बड़ी अवगाहना में फिर आप बोलेंगे साहब हवा जैसा फैल जाता होगा वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उसमें इतनी स्वाभाविक शक्ति है आत्मा में कि वो छोटी से छोटी अवगाहना में भी सहजता के साथ में जाता है और बड़ी से बड़ी अवगाहना में भी वो वैसे ही रहता है। इसमें कोई घनत्व का नहीं है, संकोच विस्तार का है और वो संकोच विस्तार के साथ में वो रहता है, इसमें घनत्व वाली कोई बात नहीं है। दूसरा भी एक प्रश्न है एक इनका कि अभव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जाते, उसका कारण क्या? अभव्य जीव भावलिंगी मुनि होते हैं क्या? देखना बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस अर्थ में ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ न्यू कमर्स भी आ रहे हैं और ये एक शुभ लक्षण है, नहीं तो जो जानकार लोग हैं वो सब चले जाएंगे तो फिर बाद में क्या होगा। इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि अभव्य जीवों को मोक्ष क्यों नहीं होता। देखना हमारे यहाँ पर एक पारिणामिक भाव की बात आती है, तीन प्रकार का पारिणामिक भाव माना गया है, भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व। ये पारिणामिक भाव क्यों कहलाते हैं मालूम आपको? ये पारिणामिक भाव इसलिए कहलाते हैं कि इन भावों का कोई रीजन नहीं है, स्वभाव अतर्क गोच रहा, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। आप जीव है, क्यों जीव है भाई साहब? ये पुद्गल है, ये क्यों पुद्गल है? तो बोले इसमें स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता है। इसी प्रकार से ये भव्यत्व को भी पारिणामिक भाव माना है, माने कोई जीव भव्य है तो क्यों भव्य है, तो इसको मैं ऐसा भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि भगवान जाने। माने ये प्रश्न जो है वो स्वाभाविकता का है, इसलिए वो भव्य है तो भव्य है, अभव्य है तो अभव्य है। और दूसरी बात आपने कही कि अभव्य जीव भावलिंगी मुनि होते हैं क्या, तो अभव्य जीव भावलिंगी नहीं होते हैं लेकिन द्रव्यलिंगी अनंतवार हो सकते हैं। वो जो आता है ना पंक्ति नौ के व्यक में जाता है सब, अनंत बार मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो नैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये अभव्य जीवों के लिए घटित है।
नहीं अभी उज्ज्वला बहन ने लिया था, भव्य जीवों पे घट रहा
है? नहीं भव्य जीवों पे भी घट सकता है, माने जब तक के सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो मिथ्या दृष्टि भी अनंत बार मुनि लिंग धारण कर सकता है द्रवलिंग को, लेकिन भावलिंग के ज्यादा भाव नहीं होते हैं एक बात, और अभव्य को भावलिंगी मुनि दशा नहीं होती
है। दूसरा सवाल भी आपके लिए है, सुरतारी शक्तियों में कितनी गुण रूप है, कितनी शक्ति रूप है और कितनी धर्म रूप है? हो सके तो अधिक खुलासा कर सकते हैं या कल आप लेक्चर में करें तो भी ठीक है।
लेकिन इसका ये जवाब है कि 47 शक्तियों में कितनी शक्ति रूप है ये पूछ रहे हैं। नाम ही शक्ति है। अब इसमें कितनी शक्ति रूप है? सारी शक्ति रूप है। अब गुण रूप कितनी है और धर्म रूप कितनी है, इसका जवाब कल जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा।
अगला प्रश्न है श्री उत्तम चंद जी के लिए। वैभाविक शक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए संसारी और सिद्ध भगवान की अपेक्षा से।
देखिए आत्मा में दो प्रकार की शक्तियों का उल्लेख पंचाध्यायी में आया, स्वभाव शक्ति और विभाव शक्ति या वैभाविक शक्ति। स्वभाव शक्ति तो वो है कि जो अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर शुद्ध रूप निर्मल रूप ही परिणमती है, विभाव रूप नहीं परिणमती। और वैभाविक शक्ति ऐसी है कि पर का आलम्बन लेकर के जब परिणमन होता है तो रागादि विकारी भाव रूप होता है, उसको वैभाविक शक्ति कहा है। तो दोनों शक्तियां जीव में अनादि की हैं और सिद्ध दशा में भी वे दोनों रहती हैं, लेकिन विभाव का निमित्त वहां न होने से वैभाविक शक्ति भी बिल्कुल स्वभाव रूप रहती है, उसका परिणमन वैभाविक परिणमन नहीं होता।
जैन सिद्धांत इसमें भी है सर, उसमें बरिया जी की उसमें भी है,
इस पे आगे भी है। आगम में 6 सामान्य गुणों में और गुरु लघुत्व की गुण की चर्चा आती है, फिर 47 शक्ति में अगुरु लघुत्व शक्ति की भी चर्चा आती है, और 4 अगति कर्म में गोत्र कर्म में के अभाव में भी अगुरु लघुत्व के गुण प्रकट होते हैं।
अगति कर्म
इन तीनों में अंतर क्या है?
देखिए जो सामान्य गुणों में अगुरु लघुत्व गुण कहा है उसकी तो परिभाषा ऐसी है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे, द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो और वो वस्तु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो, तो ये इतनी परिभाषा सामान्य गुण की अपेक्षा उसको अगुरु लघुत्व गुण की गई। और दूसरी कौन सी थी?
अगुरु लघुत्व वैभाविक वो अघातीय कर्म वाला,
अघातीय कर्म वाला अगुरु लघुत्व ये है कि गोत्र कर्म के अभाव में आत्मा के न तो गुरुता रहती है न लघुता रहती है। गुरुता ऐसी नहीं होती कि वो वजनदार होके नीचे गिर जाए सिद्धालय से, और लघुता ऐसी नहीं होती है कि वो हवा की तरह ये आग की जो रुई होती ना उसकी तरह उड़ जाए। ऐसा उनमें अगुलगुप्त गुण प्रकट हो जाता है कि एक जगह जाके जहाँ स्थिर होते हैं तो फिर उनमें कहीं भी कोई प्रकार का विपरीत पना नहीं दिखाई देता है। ये अगुलगुप्त गुण प्रदेशत गुण में प्रकट होता है सिद्ध भगवान के गोत्र कर्म के अभाव में। तीसरा है
अगुलगुप्त शक्ति 47 शक्तियों में है,
47 शक्तियों में उसमें
षड्गुण हानि वृद्धि,
वो षड्गुण हानि वृद्धि रूप है। तो उसमें क्या है, षड्गुण हानि वृद्धि का अर्थ बता देते आपको। आत्मा के जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव कहे ना, वो जो पर्याय परिणति है उसका भाव होता है, और इनकी जो है अभिभागी यूनिट होती है। द्रव्य जो है वास्तव में देखा जाए जो अणु, वो द्रव्य के द्रव्य अभिभागी द्रव्य है, और प्रदेश जो है वो क्षेत्र का अभिभागी अंश है, काल है वो समय रूप अभिभागी जो होता है वो अभिभागी काल का अंश है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और भाव की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो अभिभागी प्रतिच्छेद कहलाती है। प्रति समय जो पर्याय होती रहती हैं उन पर्यायों में ये जो अभिभागी शक्ति के निमित्त से उस प्रदेश में जो अभिभागी शक्ति के अंश पाए जाते हैं वे घटते भी हैं और बढ़ते भी, 6 प्रकार से घटते हैं और 6 प्रकार से बढ़ते हैं, उसको षड गुण हानि और षड गुण वृद्धि कहती। वो 6 प्रकार कौन से हैं? जैसे हानि में 6 प्रकार लगा दें तो अनंत गुणी हानि, असंख्यात गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि चलने दीजिए, वो आखिरी तक 6 चलना है, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि। इस तरह हानि के भी छह भेद हैं और वृद्धि में भी यही छह भेद लागू होते हैं। इस तरह से छह प्रकार के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या का घटना और वर्णा देखा जाता है। सच्चाई ये है कि अगुरु लघु गुण से घटना वर्णा पर्याय में कहा जा गया है प्रदेशों की अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा रियल में वस्तु में न कुछ घटता है और न कुछ बढ़ता है। इसकी हालत ऐसी है जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा आता है तो पानी बढ़ भी जाता है और पानी घट जाता है। वास्तव में समुद्र का पानी घटता बढ़ता है क्या? ऐसा वस्तु में कुछ नहीं घटता ना कुछ बढ़ता, इसीलिए उसका नाम अगुरु लघु गुण है। लेकिन ये सगुण हानि वृद्धि है, ये उसकी विशेषता है। ये तीन प्रकार के भेद है,
केवल ज्ञान गोचर
है, तीसरा भी
केवल ज्ञान गोचर है वो।
इनका तीसरा भी प्रश्न है, उन्होंने ऐसा माना ही था, क्या सामान्य केवली के भी चतुर्मुख होते हैं?
सामान्य केवली के चतुर्मुख,
देखिए वैसे तो अभी ऐसा सुनने में नहीं आया है। जो तीर्थंकर केवली हैं उनके समोसरण की समोसरण में विराजमान तो एक ही मुख वाले हैं, लेकिन देखते भर चारों मुख हैं, ऐसी उनकी कहना चाहिए इस प्रकार की महिमा या अतिशय, बस ये अतिशय पाया जाता है और वो हमने उन्हीं में ही सुना है। जनरली
बोर्ड से मेरे को इंस्ट्रक्शन आए कि 30 क्वेश्चन है तो सब एक दो दो मिनट की लिमिट रखे पर आंसर, तो सब कराओगे नहीं तो रह जाएंगे।
कुछ कैंसिल कर दो ना आप क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है भरत भाई के लिए, भूतकाल और भविष्य काल की अनंत पर्याय आत्मा में निबंध है, वे सब गुण रूप है या योग्यता रूप है या परिणामी भाव रूप है? एक पार्ट। दूसरा पार्ट है, मैंने कभी सोचा था कि उंगली नंबर 1, 2, 3, 4 सभी मिलकर भी दृष्टि का विषय बन सकता है, कृपया आगम के आधार से समझाइए।
योग्यता रूप परिणति है जो जीवन में पर्याय जो है, जो योग्यता रूप परिणामिक भाव की परिणति है, परिणामिक भाव की पर्याय है योग्यता रूप की परिणति। फिर वो चारों अंगली दृष्टि का विषय बन सकता है? नहीं, चारों अंगली नहीं बन सकती, चारों अंगली दृष्टि का विषय नहीं बन सकती है कभी भी। ये तो समझाने के लिए वो निश्चयनी का विषय कह सकते हैं, आगम ज्ञान प्रधान निश्चयनी का विषय है, जैसे बोला नहीं जो है उसका 44 में वो निश्चयनी भी आया है जो बंद और मोक्ष मार्ग में जीवी परिणमित होता है, ये निश्चयनी का विषय है। और एक प्रवचन सार में 189 दूसरा भी आता है कि राग रूप जीव परिणमता है वो दुख को भोगता है, ये निश्चय नहीं है।
एक द्रव्य
शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं है, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय नहीं है। और कर्म से बंधा है और कर्म से छूटता है वो अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप और अशुद्ध नहीं है। और वो शुद्ध नहीं जो है निश्चय नहीं जो है वो आदर करने योग्य है, इस प्रकार का पाठ। वो आदर करने का अर्थ ऐसा है कि वो पर से भिन्न करना है, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में लाने का है, अगर वो दृष्टि का विषय नहीं बन सकता।
अगला प्रश्न है, प्रश्न भी है थोड़ी कमेंट भी है, राकेश जी आपके लिए है, हम आपको बहुत चाहते हैं
वाह,
मगर यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा नहीं है ये। आपने कल बताया था कि आत्मा में स्वच्छत्व शक्ति व्यवहार से है, ये आपकी रिसर्च है या आपके पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में कहाँ देखा है? मुझे तो ये बात कहाँ भी गले में उतर नहीं रही है।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो इन्होंने बहुत स्पष्ट पूछा है प्रश्न और मैं भी बहुत स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूँ इसका। गुरुदेव श्री की बात पूछी है तो मैं बहुत कन्फर्मली नहीं कह सकता कि गुरुदेव श्री के उसमें आया है कि नहीं आया है, लेकिन जो रिसर्च वाली बात कही है वो आप समझ भी सकते हो कि ये मेरी रिसर्च है। लेकिन इसमें ये समझने की बात है कि जहां परद्रव्य की सापेक्षता आती है वहां पर व्यवहार में लागू पड़ता है। जहाँ आत्मा की बात है, प्योर आत्मा की बात है, परद्रव्य की सापेक्षता नहीं है, वहाँ निश्चय नहीं है, और जहाँ परद्रव्य की संयोगी कथन किया जाता है तब वहाँ व्यवहार नहीं हो जाता है। यहाँ पर स्वच्छत्व शक्ति में, उस स्वच्छत्व शक्ति की परिभाषा ऐसी आपको बताई थी कि निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोका लोकाकार मेचकोप योगमयी स्वच्छत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति कह रहे हैं और उसको कह रहे हैं मेचक उपयोगमयी है। अब ये मेचक उपयोगमयी जो स्वच्छत्व शक्ति है इसको आप निश्चय ने कैसे कह सकते हो? और दूसरी बात, नियम सार का हवाला है, नियम सार में ये कहा है जानदि पश्यति सर्वम व्यवहार नयेन केवली भगवम, कि व्यवहार केवली भगवान सारे लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार नहीं है, इसलिए लोकालोक का प्रकाशक आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, ये व्यवहार नय से ही कहा जा सकता है। और निश्चय नय से तो वो आत्मा स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति, इसलिए मैंने इसमें ये भेद किया था कि स्वच्छत्व शक्ति व्यवहार नय का विषय है और ये निश्चय नय का विषय है, ऐसा मेरा मंतव्य। शायद उत्तम जन जी कुछ कह रहे हैं।
देखिए, आपको भी संतोष हो जाए और उनकी भी बात सिद्ध हो जाए, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं?
सही है, सही है।
शक्तियाँ सभी निश्चय, क्या कहा? क्योंकि शक्ति है उसका सबका स्वरूप निश्चय, लेकिन वो जो इसमें कथन की अपेक्षा जो लगाई गई है वो उस अपेक्षा व्यवहार है।
आपको संतोष हो गया होगा।
भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। ध्येय भूत अभय और ज्ञेय भूत अभय, ये शब्द आप यूज करते हो, कृपया उनका अर्थ स्पष्ट करें।
ध्येय भूत अभेद का अर्थ ऐसा है कि उसमें अनंत गुण समाते हैं, उसको ध्येय बोलते हैं। ध्येय भूत अभेद माने कि उसमें है वो गुण, उसके लिए उसको ध्येय भूत अभेद बोला जाता है। और ज्ञेय भूत अभेद का प्रकरण ऐसा है कि जो 17-18 गाथा में आया है कि ये ज्ञान का उपयोग है, उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो वो जो बात है वो ध्येय की नहीं है, वो त्रिकाली द्रव्य की बात नहीं है, वो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा माने के ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा वो अनुभव में आ रहा है, यानी जानने में आ रहा है। तो जानने में आ रहा है तो ज्ञायक जानने में आ रहा है, तो वो ज्ञायक को ज्ञेय बनाती हुई भी हुई ज्ञान की पर्याय चलती है, तो उसको ज्ञेय भूत अभेद बोला जाता है। उसका मतलब ध्येय भूत अभेद और ज्ञेय भूत अभेद।
चेतन भाई, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाथा 11 में भावार्थ में कहा है कि शुद्ध नय का पक्ष कभी भी आया नहीं है। मैं तो समझता था कि किसी नय का पक्ष होना मोक्ष मार्ग में बाधक है, इसलिए हमें शुद्ध नय का पक्ष भी नहीं लेना चाहिए।
बहुत बढ़िया, सुंदर।
उसके वो शुद्ध नय का पक्ष का अर्थ ये होता है कि शुद्ध स्वरूप की अनुभूति कभी नहीं हुई है, उसको शुद्ध नय का पक्ष बोला है। इसमें तो वो अनुभूति नहीं हुई है उसको ऐसा पक्ष बोल के शब्द रचना की गई है। सचमुच में अनुभूति की बात है।
कौन से
भरत भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या प्रवचन सर गाथा 80 में उंगली 1-2-3 वाले आत्मा को ज्ञान प्रदान दृष्टि का विषय बताया है? उसमें दूसरा पाठ है, चौथी उंगली में इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होता है, इस बात को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। और तीसरा उसमें उंगली का ही है। अच्छा, इंद्रिय प्रेरण है तो दूसरे पहले दो का जवाब दीजिए।
इसी गाथा में अरियन भगवान के साथ अपने द्रव्य गुण पर्याय को मिलाया है, जैसे अरियन भगवान को चेतन द्रव्य है, उसके चैतन्य में गुण है और चित्त विवर्तन उनकी पर्याय है, उनको इंद्रिय ज्ञान या मति ज्ञान या शुद्ध ज्ञान ऐसा नहीं कहा, व्यक्ति परिवर्तन नहीं कहा, चित्त विवर्तन, चैतन्य का विवर्तन उत्पाद विरूप परिणाम है, वो ऐसा ही मेरा है, ऐसा तू उसके साथ मिलान कर, वो द्रव्य में और गुण में और पर्याय में। द्रव्य गुण तो समान है ही, उसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, मगर पर्याय में तो उसको केवल ज्ञान है, उनको केवल ज्ञान है, और मेरे को ज्ञान है, उनको अतिन्द्रिय ज्ञान है, मेरे को इंद्रिय ज्ञान है, उनको केवल ज्ञान है, मेरे को मति शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार का जो कर्म के सापेक्ष से डिफरेंस होता है या शुद्धता होती है, वो उसको मत देख, तू उनको भी ज्ञान सामान्य पने देख, तो वो ईद विवर्तन होता है तो मेरे में भी ईद विवर्तन होता है। इस प्रकार से वो द्रव्य और पर्याय को द्रव्य में संक्षेप किए और गुण गुण की वासना जो है उसका भी अभाव करके
अंतर्धान
एक निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव को पाता है तब वो मोह का क्षय होता है। मोह का क्षय करने का उसमें उपाय बताया कि मोह का क्षय किस प्रकार से होता है, तो उसमें द्रव्य गुण पर्यायत्मक जो अपना आत्मद्रव्य है वैसा जैसा है ऐसा जान ले तो उसको निष्काम भाव को प्राप्त करता है और ऐसा जवाब दे के वो मोह आप उसमें क्षय हो जाता है। इस प्रकार वर्णन किया।
एक मिनट बता दू, 80 नंबर की गाथा में तीनों शब्दों में भाववाचक होना है, गुणत गुणत पर्यायते ही, समझ में ना? तो पर्याय की बात नहीं है, पर्याय स्वभाव की बात है। क्या कह रहे हैं?
बहुत अच्छा।
द्रव्य स्वभाव तो हमारा अरहंत जैसा है ही, गुण स्वभाव भी अरहंत जैसा है और पर्याय स्वभाव भी अरहंत ही जैसा है।
बहुत अच्छा,
समझ में आया ना? इसलिए उसमें अंतर नहीं समझना। अंतर अगर कहीं है तो प्रकट पर्याय में अंतर है, वो विषय हमारे द्रव्य गुण पर्याय वाले में नहीं लिया है, उनमें तीनों में लिया है, द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायते। जो जानति अपानम, जो आत्मा को द्रव्यपणे से जानता है, अरहंत के आत्मा को गुणपणे से जानता है और पर्यायपणे से जानता है, तो वो दोनों में भेद नहीं मानता। सो जानति अपानम, इसलिए वो अपने आत्मा को जानता है, और जो अपने आत्मा को जानता है मोह खलु जादि तस्य लयम, उसका मोह क्षय को प्राप्त।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
उसमें एक पार्ट, लास्ट पार्ट है, आगम ज्ञान पद्धति के बारे में थोड़ी स्पष्टता कीजिए।
आगम ज्ञान पद्धति, आगम ज्ञान पद्धति माने वो आगम माने क्या? आगम माने शास्त्र की बात नहीं होकर, आगम माने वो आगंतुक भाव, जो भाव अपने स्वाभाविक भाव है, आत्मा का जो अधिकार है उसको अध्यात्म कहते हैं, और जो आगंतुक भाव है कर्म के संबंध से अपना स्वभाव न होने पर भी जो अपने आत्मद्रव्य में जो पर हो जाते हैं वैभाविक भाव विकारी भाव, वो उसको भी आत्मा का कहना, वो आगम पद्धति की बात है। तो आगम पद्धति में जो जो जितना अपना द्रव्य में है, अनंत धर्म का जिसका आत्मद्रव्य है, उसमें से कुछ भी बात नहीं होता है। आगम जो पद्धति है उसमें अपना द्रव्य गुण और पर्याय शुद्ध अशुद्ध सब पर्याय का अधिष्ठात आत्मा है ऐसा जानना, वो आगम पद्धति।
चेतन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, साधक दशा कैसे आती है और अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो जाता है?
वो विधि तो अपनी 4 दिन से चल रही है, वो अभी नहीं समझा हो तो इतना समझ लो कि त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से साधक दशा आती है,
ज्ञानी भी वैसे ही बनता है।
अगला प्रश्न है उत्तम चंद्री के लिए, पर्याय और परिणति दोनों शब्द में अध्यात्म की शैली में कुछ अंतर है क्या?
देखिए, गुणस्थान की शैली के अंतर्गत छठवें गुणस्थान में शुभोपयोग होता है, और जब वो सातवें गुणस्थान में जीव जाता है तो शुद्धोपयोग होता है, लेकिन वो शुद्धोपयोग के साथ में कषायांश की मौजूदगी के कारण शुभ परिणति विद्यमान रहती है, शुभोपयोग नहीं रहता सातवें गुणस्थान में, लेकिन शुभ परिणति विद्यमान रहती है, और ये शुभ परिणति दसवें गुणस्थान तक जाती, उसी से आश्रव बंद होता है। धन्याया, शुद्धोपयोग से तो संवर निद्रा असंख्यात गुणी बढ़ती चली जाती, लेकिन शुभ परिणति से दसवें गुणस्थान तक निर्जरा के साथ साथ आश्रव भी होता है, और वह आश्रव शुभ परिणति से होता है, और ये शुभ परिणति की सत्ता सातवें गुणस्थान से शुरू मानी गई और दसवें तक गई है, लेकिन ये जो नीचे के गुणस्थान वाले जीव हैं, ऐसे में जैसे पांचवें का है छठवें का है, तो उपयोग में छठवें में परिणति न होकर के शुभोपयोग होता है। शुभ परिणति तो तब कहलाए कि उपयोग कोई और हो लेकिन उस भाव की विद्यमानता है तो परिणति कहलाती। शुद्ध परिणति ऐसी है कि छठे गुणस्थान में शुद्ध परिणति मौजूद है। क्या कह रहे हैं? कैसी कि उपयोग तो स्वरूप है लेकिन तीन कषाय का अभाव निरंतर वर्त रहा है तो वो शुद्ध परिणति कहलाती है, और शुद्ध परिणति से संवर निद्रा चलती है, और उपयोग शुभ है उससे आश्रव बंद होता है। ऐसी पद्धति चलती है और ये चौथे गुण स्थान से इस प्रकार की पद्धति चालू हो जाती है जहाँ समर निद्रा भी चलता है आश्रव बंद भी चलता है दसवें गुण स्थान तक। दसवें के बाद मोह का उपशम या क्षय होता है तो फिर वो आश्रव बंद सर्वथा रुक जाता है जिससे संसार का आश्रय होता है वो रुक जाता है और मात्र निर्जरा ही वहाँ चलती है ऐसी है इसकी शैली।
हाँ उनका आगे भी प्रश्न है दृष्टि प्रधान दृष्टि से आत्म अनुभूति होती है वैसे ज्ञान प्रधान दृष्टि से भी आत्म अनुभूति होती है क्या?
ये मेरे से पूछा।
हाँ जी
अच्छी देखिए मैंने कहा कि नहीं बाजू वाले उंगली वाला प्रश्न था ना तो कोई बात नहीं वो मैं भी समझ गया हूँ उंगलियों को
बहुत खुशी की बात है।
दृष्टि प्रधान कहा है वास्तव में देखा जाए तो दृष्टि प्रधान और ज्ञान प्रधान एक कथन के भेद हैं अभिप्राय के भेद नहीं है। सही नया जिस वस्तु को तुम विषयभूत बनाते हो अपने कहना चाहिए अनुभव का ध्येय का विषय बनाते हो वो ध्येय वाली वस्तु में ये दो भेद नहीं होते ये तुम्हारे वचनों में दृष्टि अपेक्षा और ज्ञान अपेक्षा ये भेद तुम्हारे वचनों के भेद हैं अभिप्राय के भेद नहीं है और अभिप्राय में दो प्रकार के ध्येय नहीं होने होते ध्येय एक ही होता है उसके कथन दो प्रकार के होते एक दृष्टि प्रधान कथन होता है एक ज्ञान प्रधान कथन होता है
और एक पार्ट है इसमें ध्रुव विशेष में निष्क्रिय रूप से ध्रुव सामान्य को नाम का प्रभाव रूप से अंदर में चलता है क्या? ध्रुव विशेष में निष्क्रिय रूप से ध्रुव सामान्य का नाम का प्रभाव रूप अंदर में चलता है क्या?
ऐसा है कि ज्ञायक स्वभाव तो जो है वो निरंतर विद्यमान रूप ही चलता है लेकिन कोई उसमें ऐसे पर्याय जैसे कोई परिणमन नहीं होता।
और आगे भी लिखते हैं कि और निष्क्रिय रूप जानना होता है क्या?
निष्क्रिय रूप
जानना
अन निष्क्रिय रूप जानना का मतलब यही हुआ कि उत्पाद व्यय रूप परिणति नहीं हो रही जानन पड़े की लेकिन ज्ञायक स्वभाव तो सदाकाल विद्यमान ही रहता है हर पर्याय में विद्यमान है पर वही निष्क्रिय जानन पना है क्योंकि उत्पाद व्यय रूप हो तो सक्रिय जानन पना कहलाएगा लेकिन जब उत्पाद व्यय नहीं है स्वभाव में ध्रुव स्वभाव में तो वहां पर जो जानन पना है वो विद्यमान है उसका स्वभाव निरंतर ध्रुव रूप में विद्यमान है अन्वय रूप में विद्यमान है पर है स्वभाव तो प्रकाश के ये अपेक्षा से कहा है अगर और कोई अभिप्राय हो तो भाई जी बताइए।
ठीक बात है
अंदर में वो केवल नाम स्वभाव उपयोग है चैतन्य निर्दय परिणाम उपयोग है उनके जो भेद किए हुए हैं उपयोग के लक्षण के उनमें एक केवल ज्ञान एक स्व
केवल ज्ञान उपयोग
उपयोग है वो स्वभाव और विभाव दो प्रकार के हैं और स्वभाव उपयोग जो है वो दो प्रकार के हैं एक कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग एक कार्य स्वभाव कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग तो उत्पाद वाली जो परिपूर्ण शुद्ध हुई उसको कार्य स्वभाव कहते हैं अंदर में जो एक कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग है वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम जो है वो सब में लागू पड़ता है ऐसा गुरुदेव का कथन चैतन्य अनुविधायी परिणाम तो जो चैतन्य के अनुविधायी ये परिणाम है जिन पंचम भाव की परिणति कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग जो ज्ञान गुण की कारण सुत्क्रिया है वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम है और उसमें वो शक्ति रूप है वो क्रिया रूप नहीं है उसमें स्वभाव प्रकाशक की क्रिया नहीं होती है मगर उसमें वो सकल प्रत्यक्ष है वो जो है वो अपने स्वभाव को जानने में समर्थ है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य ऐसे अपने जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव है वो उसको जानने के लिए वो समर्थ है इस प्रकार का पाठ है पद्मल्लाय देव का कि ये जो अंदर की जो परिणति है वो स्वरूप प्रत्यक्ष है और उसके आश्रय से जो कार्य प्रकट होता है वो केवल ज्ञान कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग प्रकट होता है वो सकल प्रत्यक्ष है इस प्रकार से स्वभाव प्रकाशक की क्रिया पर्याय में होती है मगर अंदर में उस प्रकार का परिणमन चालू ही रहता है उस प्रकार के प्रवाह चालू रहता है तो वो गुरुदेव जी बोलते हैं कि ध्रुव प्रवाह चैतन्य के नूर का पूर्व चलता है अंदर में और उसका आश्रय करके जो पर्याय जो है वो उसमें से प्रवाहित होती है और ये कार्य में भी प्रकट होती है
उसको उत्पाद व्यय रूप में
वो उत्पाद व्यय है अंदर में जो है वो उत्पाद व्यय है वो ध्रुव रूप से उत्पाद होना है और व्यय होना ऐसा नहीं है।
अगला प्रश्न है उत्तम चंद जी के लिए, इनको कुछ बहनों से कंप्लेन है, उसको पहले इनके रुख करते हैं। श्री भगवान के अभिषेक के समय कई बहनें दोनों हाथ ऊपर करके अभिषेक करती है, तो क्या ये योग्य है
अभिषेक?
हाँ, वो ऐसा करती होंगी, असल में बता देता हूँ क्यों करती हैं ये भी मैं बता देता हूँ, और क्या करती हैं ये भी बता देता हूँ, वहाँ आगम विरुद्ध कैसा है ये भी बता देता हूँ,
क्या करना चाहिए
और क्या करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। बात ये है कि जो अभिषेक करने वाले अभिषेक करते हैं तो वो जल का कलश जिनेन्द्र भगवान पर ढारते हैं, है ना, डालते हैं मतलब, है तो ये तो इनको तो कलश लेके ढारने की मनाही है, तो ये भावों से कलश ढारती हैं उनके ऊपर, तो ऐसी एक्शन करके कलश जैसे हम भी ढार रहे हों ऐसा वो एक्शन करती है। आवाज गड़
तार पकड़ लो।
अच्छा, फिर से कि वो जो तुम्हारे से लोग पुरुष वर्ग जो करते हैं अभिषेक, तो महिलाओं को तो अभिषेक करने की मैंने कहना चाहिए मनाही है, और वो मनाही भी बहुत रीजनेबल है, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और तो वहाँ उनकी भावना ये रहती है कि पुरुष वर्ग भले साक्षात वो कर रहा है अभिषेक, और मेरी भी भावना होती है कि मैं भी साक्षात अभिषेक करूं, तो मैं अपने हाथों ही की एक्शन के द्वारा मानो मैं भी उनको स्नान करा रही हूँ, इस भावना से वो एक्शन करती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो चीज तुम्हें निषिद्ध हो उसको एक्शन करके भी नहीं करना, अन्यथा पाप बंद होगा। समझ में आ गया? जो निषिद्ध है उसको आप एक्शन नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह से हम अपने ऐसे, तो मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ हम लोग कितनी अच्छी बात करें, जिनवाणी अगर विराजमान हो तो तालियां नहीं बजाया करो, सुन लो जरा ख्याल से, ये जिनवाणी के सामने ताली बजाना है जिनवाणी का अभिनय है, गंभीरता का अभाव, इसलिए वो नहीं होना। तो बहनों से भी निवेदन है कि ये एक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, अनुमोदना तुम ऐसा करो कि वाह, जिनेन्द्र भगवान जिनका अभिषेक इंद्रादि करते हैं, अगर मुझे भी मनुष्य पर्याय मिली तो मैं भी इस कार्य को करूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। ऐसे में तो मनुष्य पर्याय पाने के लिए एक ही उपाय है, सम्यक दर्शन हो जाए तो स्त्री पर्याय होती नहीं,
स्त्री पर्याय का चल
में नहीं, उसका छेद हो जाता है। प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष बाण भवन संड नारी थावर विकलत्र पशु में नहीं उपजत सम्यक
हारी।
तो आप भावना अगर भावना हो वो कार्य की भी, तो सम्यक दर्शन की भावना भाव सम्यक दर्शन प्रकट करो, और अगर पुरुष पर्याय में हो कहीं भी या इंद्र के रूप में हो तो जिनेन्द्र का अभिषेक करो, वैभव के साथ करो, कोई परेशानी ऐसा नहीं।
हाँ, अगला प्रश्न है राकेश जी के लिए, ज्ञान सविकल्प है तो अनुभव के समय
सविकल्प
किस तरह है?
निर्विकल्प। अनुभव के समय निर्विकल्प किस तरह?
नहीं, सविकल्प ज्ञान सविकल्प होता है ना हमेशा, तो निर्विकल्प अनुभव के समय भी तो सविकल्प है, तो वो कैसे है? ये तो बहन श्री बहन से गुरुदेव ने पूछा था
दोनों,
लेकिन आप मेरे से पूछ रहे हो, मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे। देखना, इसमें बहुत अच्छा विषय है ये कि ज्ञान सदा काल सविकल्प है, सदा काल साकार उपयोग में ही ज्ञान शक्ति, इसलिए सदा काल उपयोग जो है वो ज्ञान जो है सविकल्प होता है, और केवल ज्ञानी का ज्ञान भी सविकल्प माना गया है क्योंकि वो भी साकार उपयोग में ही है। इसलिए जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है तो उन्होंने निर्विकल्पता तो यहाँ चारित्र की अपेक्षा से है, कषाय की उपशांतता की अपेक्षा से है, कषाय के अभाव की अपेक्षा से निर्विकल्पता है, मिथ्यात्व के अभाव भी है उसमें, और एमचंद जी भाई साहब कह रहे हैं आनंद की अनुभूति है वो भी निराकुल स्वरूप है, इसलिए उसकी अपेक्षा से निर्विकल्पता कही है। ज्ञान में तो उसने ज्ञान में तो अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य किया है, शुद्धात्मा का साकार उपयोग किया है, ये ज्ञान की सविकल्पता है। उस समय भी निर्विकल्पता के समय भी उसने ज्ञान उसने अपने ज्ञान में अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान का लक्ष्य किया है ना, उसका आश्रय लिया है, उसको अपने उपयोग में साकार किया है, इसलिए ये अपेक्षा से वहां पर भी ज्ञान सविकल्प है, वो श्रद्धा की अपेक्षा से, चारित्र की अपेक्षा से और सुख की अपेक्षा से, हम राग के अभाव की अपेक्षा से उसको निर्विकल्प कहते हैं। दोनों की अपेक्षा अलग अलग है।
इसमें थोड़ा सा
ये प्रश्न कई बार हमने बेंसरी के मुख से भी सुना, वहां चर्चा होती थी, तो जो स्वयंपद प्रकाशक पना है निर्विकल्प दशा में कि ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, ज्ञायक को जान रहा है, अभेद की स्थिति में, लेकिन आनंद को भी वेदन कर रहा है, तो आनंद ज्ञान गुण के अपेक्षा अन्य गुण का कार्य है, वो अपेक्षा से वहां पर भी निश्चय निर्विकल दशा में भी स्वयंपर का प्रकाशन चल रहा है,
स्वयंपर प्रकाश
का, इस प्रकार से वो साकार उपयोग वहां सभी का उपयोग सिद्ध होता है।
चलो आपको आधा समय
एक मिनट और बता दूं थोड़ी सी
विकल्प दो प्रकार के जो होते हैं उनका स्वरूप बता दूं। सविकल्प दो प्रकार के हैं, एक तो ये कि जो भी उपयोग की प्रवृत्ति होती है यदि वो राग सहित होती है तो उसको सविकल्प कहते हैं, ज्ञान में ज्ञानांतर जो होता है उसको सविकल्प कहते हैं, बिना राग के भी बीतरागी के भी अगर ज्ञान में ज्ञानांतर होता है तो उसको सविकल्प कहते हैं, वो निर्विकल्प दशा में भी सविकल्प दशा मौजूद होती है। तो निर्विकल्प दशा तो ये रहती है कि बुद्धि पूर्वक का राग खत्म हो गया है और स्वभाव में मगन है, इसलिए शुद्ध उपयोग जैसी दशा है, और वहां फिर भी ज्ञान में ज्ञानांतर बना अगर चल रहा है तो वो ज्ञान भी सविकल्प
सविचार
अनुभव के काल में भी वो सविकल्प बना
गया, शुक्ल ज्ञान।
चलिए एक प्रश्न में से आप तीनों को आधा समझ दर्शन तो मिला, अभी एक बात बाकी है। आत्मा आनंद और निर्विकल्पता में भेद अथवा काल का अंतर क्या है?
अगेन फिर से बोलो।
आत्मा आनंद
ये उसमें से एक प्रश्न ये भी है, जो पांच प्रश्न थे ना गुरुदेव के, उसमें से ये प्रश्न दूसरा ये भी प्रश्न है कि निर्विकल्प दशा में और आत्मा के आनंद में क्या अंतर है ये बताओ, और इसका काल अपेक्षा से भी अंतर बताओ। गुरुदेव ने ये प्रश्न पूछा था और मैंने इसके दोनों के जवाब पढ़ लिए। चंदाबेन ने क्या जवाब दिया था और शांताबेन ने क्या जवाब दिया था, आप कहो तो वो जवाब दे दूं और आप कहो तो मैं अपनी तरफ से जवाब दे दूं।
उनसे
आपको मैंने बता दिया था, वो मैंने को नहीं करना चाहिए था।
नहीं नहीं मेरे को मालूम है भाई साहब,
जो भी है जो भी दो।
देखिए इसमें जो है दोनों बहनों के जवाब ये थे कि इसमें कोई अंतर नहीं है, और काल की अपेक्षा भी जितने काल तक निर्विकल्पता रहती है उतने काल तक आत्मा का आनंद रहता है, इसलिए निर्विकल्पता और आनंद में कोई अंतर नहीं है। और इसमें जो है शाब्दिक रूप से निर्विकल्पता से अतीन्द्रिय आनंद से हम कोई शाब्दिक रूप से अंतर ढूंढने की कोशिश करें तो वो पंडिताई का विषय है, वास्तव में तो जो बहनों के जवाब है वो एकदम इसमें परम सत्य है, इसमें मुझे कोई कमी लगती नहीं।
ज्ञान की सविकल्पता बताने को भी किया था,
नहीं ज्ञान की सविकल्पता के लिए नहीं है, निर्विकल्पता निर्विकल्प दशा और अतीन्द्रिय आनंद इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, काल की अपेक्षा से भी कोई अंतर नहीं है।
अगला प्रश्न कार ने चेतन राय और उत्तम चंद जी दोनों के नाम लिखे है, तो जिनको भी जो पसंद हो वो जवाब दे सकते हैं। आपने कहा कि वर्तमान पर्याय का भूतकाल व भविष्य की पर्याय से कोई संबंध नहीं है, तो कहते हैं कि संस्कार भव में काम आते हैं, अगले भव में काम आते हैं, तो इससे क्या समझना?
ऐसा है कि पूर्व की पर्याय जो होती है वो व्यय होके अंदर परिणामी भाव में गुण रूप हो गई है, वर्तमान पर्याय प्रकट है, भविष्य की पर्याय अंदर में गुण रूप से गुण में शक्ति रूप पड़ी है, तो एक पर्याय वर्तमान ही प्रकट रहती है। अभी भूतकाल में जो सुभाव की पर्याय थी वो अंदर व्यय होके चली गई, तो वर्तमान में वो भूतकाल का संस्कार है वो तो अंदर पारिणामिक भाव में, संस्कार अंदर गया माने पर्याय पारिणामिक भाव में अंदर गुण रूप हो गई। अभी उसमें ऐसा है कि वो ऐसा बोला जाता है कि संस्कार डाला इसने, इतने टाइम तक संस्कार डाला है, तो गुरुदेव का ऐसा खुलासा आया है कि संस्कार का मतलब ये है कि उसकी बात की पर्याय जो आएगी वो ऐसी ही आएगी कि वो जैसी आई तो उसको बोला जाएगा कि वो संस्कार लेके आई, बाकी पूर्व पर्याय ऐसी हुई इसीलिए वर्तमान पर्याय ऐसी आई, ऐसा कोई कारण कार्य भूत और वर्तमान पर्याय में कभी बनता नहीं है।
दोनों से पूछा था मैं बता देता हूँ जरूर।
इसमें दूसरा बात भी यू सुन लीजिए, दोनों आप
अच्छा बोल दीजिए, दोनों बोल दीजिए।
नेह काल इसमें ज्ञेय पदार्थ आकार से क्या समझना, नेह काल
और ज्ञान आकार
नहीं, नेह काल इसमें ज्ञेय और पदार्थ के आकार से क्या समझना।
देखिए पहले तुम्हें वो बता दूं जरा संस्कार वाली बात, अपने अभाव पड़े हैं चार है? प्राग भाव का अर्थ होता है कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, प्रध्वंस अभाव का अर्थ होता है कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, संस्कार तो वो कहते हैं जो पर्यायों में चले ऐसे में, तो सच पूछो वास्तव में स्वरूप से देखा जाए तो एक पर्याय का संस्कार दूसरे में जा ही नहीं सकता क्योंकि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव, एक बात। अब दूसरी बात, संस्कार की परिभाषा ये है कि जिस जाति का परिणाम अभी हुआ उसी जाति का अगली पर्याय में भी हो तो कहने में आता संस्कार। जैसे उदाहरण बता दूं आपको, सवेरा होते ही 7-8 बजे के 7 बजे चाय की याद आती है, वो रोजे याद आती है, क्यों आती,
संस्कार,
संस्कार वो संस्कार है, इसको संस्कार कहते हैं। पर वाकई में कोई पर्याय का संस्कार किसी में चला जाए ये बात संभव नहीं है। और अब भी आज दो नए भी बताए थे भाई साहब ने, वो स्वभाव नए और अस्वभाव नए, स्वभाव नए तो संस्कारों को निरर्थक करने वाला है,
अस्वभाव नए संस्कार को सार्थक,
और अस्वभाव नए संस्कारों को सार्थक करने वाला है। और दो दृष्टांत भी दिए थे, जैसे कांटे में स्वयं नोक होती है कोई बनाने वाला नहीं, कौन ने संस्कार डाला उसमें नोक का, अपने आप हुई है वो हो गया स्वभाव नहीं। और
बाण में
जो जो लोहार वो बनाते हैं नोक, वो लोहार बनाता है उसको वो संस्कार कहलाता है, तो इस तरह देखा जाता है। तो एक कथन में तो संस्कार का भी नाम चलता है, अभी भी अपन कहते बच्चों में संस्कार डालो, ये शिविर लगा रहे ये संस्कार ही डाल रहे हैं, मगर इसलिए ऐसे संस्कार डाल रहे हैं कि आप आज जो सीख लो ये इसी को कल भी आपको याद आना चाहिए, और ये संस्कार चले अगर बारंबार घोलन होता रहे तो अपने प्रयोजन की सिद्धि वाली पर्याय भी अपने सामने आ जाएगी। और ये था जो हिंदी में लिखा है तो मैं पढ़ लूंगा फिर
नीचे वाला
नीचे गेय आकार इसमें गेय पदार्थ आकार से क्या समझना। सुनो गेय आकार में दो आते हैं अपने सामने, पहली बात तो ये है कि गेय किसको कहते हैं, ज्ञान में जो चीज झलकती है वो गेय कहलाती है। क्या कहा, ज्ञान में जो भी चीज झलक सकती है वो गेय कहलाती है, ज्ञान का स्वभाव छलकाने का और गेय का स्वभाव झलकने का है, समझ में आया ना, तो जो वस्तु ज्ञान में झलकी वो सब गेय कहलाती है। अब उसमें दो प्रकार के गेय होते हैं, एक स्वगेय होता है और एक बाकी सब परगेय होते, तो परगेय जैसा ज्ञान में आकार बना तो अपन कहेंगे व्यवहार से कि पर गेय का आकार है, ऐसा कहेंगे, समझ में आएगा नहीं। और अगर आकार कोई नहीं बना है केवल आत्मा ही उसमें झलका है ज्ञान में, समझ में आएगा नहीं, या आत्मा के अन्य कोई गुण झलके हैं सुख झलका है तो वो भी गेय आकार कहलाएगा, वो अंतर गेय आकार कहलाएगा, और बाहर के पदार्थ झलकते हैं उसको बाह्य गेय आकार कहते हैं। नियम सार की परम प्रमलधारी देव की टीका में बात आई है। अब दूसरी बात बता दें, गेय आकार में ध्यान ये रखना है कि गेय का आकार गेय में रहता है ज्ञान में नहीं आता, और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में होता है वो गेय के पास नहीं जाता। और यही कारण है कि लघु तत्व स्फोट में अमृत चंद्राचार्य ने ऐसे श्लोक लिखे हैं कि हे जनेन्द्र भगवान, यद्यपि जो 6 पदार्थ हैं 6 द्रव्य हैं वे 2 प्रकार के हैं, चेतन और अचेतन, अथवा रूपी और अरूपी, लेकिन आपके ज्ञान में जो छह पदार्थ झलकते हैं वे सब के सब अरूपी और चेतन।
क्या बात है,
क्या कहा, अरूपी और चेतन। इसका अर्थ ये है कि वो ज्ञान की रचना है, जो गेय आकार जैसा झलकन हुई है वो ज्ञान की रचना, इसलिए उसमें ज्ञान के ही गुण मिलेंगे। तो अमूर्ति पणा भी है तो आपके छहों द्रव, आपका लोक अमूर्तिक है, उसमें झलकने वाले क्षेत्र भी अमूर्तिक है, ऐसा ऐसा ज्ञान
उद्गल भी अमूर्तिक
है। हाँ, उद्गल भी उसमें अमूर्तिक और चेतन। उद्गल का लक्षण अपने जो ज्ञानाकार में होता है, ज्ञाकार में जो होता है वो लक्षण उसका चेतन है, अचेतन नहीं है, समझ ले रहे जरा। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि बाहर के पदार्थों को ज्ञान ऐसा जानता है कि चेतन को चेतन रूप जानता है और अचेतन को अचेतन रूप जानता। अगर ऐसा न जाने तो भेद ज्ञान होना संभव।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये सवाल भी चेतन 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 को ही समझने वाली बात है। एक ही पर्याय में शुद्ध अंश और अशुद्ध अंश साधक दशा में चलते हैं, क्या उनके प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं और दूसरे कोई अपेक्षा है?
नहीं, वो अशुद्ध और शुद्ध दो अंश होते हैं तो प्रदेश तो ऑटोमेटिक भिन्न ही हो गए ना। अशुद्ध अंश और शुद्ध अंश मिल जाए तो दो नाम ही नहीं पड़ते हैं, तो अलग अलग ही हो गए।
प्रदेश भेद है क्या?
हाँ, तो प्रदेश भेद तो है ही, अशुद्ध का प्रदेश अलग है, शुद्ध का प्रदेश अलग है।
और दूसरे कोई अपेक्षा है?
नहीं नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। हाँ, एक ही बढ़िया है, एक ही बढ़िया है कि दो भाव हो जाते हैं, दो भाव भी बोले हैं गुरुदेव ने, दो भाग भी बोले
हैं। चेतन भाई, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या दृष्टि को व्यवहार आवास होता है, तो अभी हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या हम सब व्यवहार आवासी है क्या?
जैसे प्रकरण में बताया गया है कि निश्चय नहीं पूर्वक ही व्यवहार नहीं का जन्म होता है, उससे पहले व्यवहार नहीं ज्ञानी के बिना किसी को लागू नहीं पड़ती है, इसीलिए ऐसा शब्द गुरुदेव ने ही बोला है। मगर ऐसा तेरहवीं गाथा में भी ऐसा आया है कि सविकल्प व्यवहार भी अज्ञानी को होता है और वो व्यवहार भी उसको चलता रहता है, उसके बाद में उसको निश्चय प्रकट होता है तो समित प्रकार का व्यवहार नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा भी है। जैसे निश्चय की अपेक्षा व्यवहार नहीं अभी प्रकट नहीं हुआ है तो उसको व्यवहार भाव से ऐसा बोला जाता है।
राकेश जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन उपयोग सामान्य प्रतिभास रूप से है, श्रेणी की निर्विकल्प दशा में प्रथम शुक्ल ध्यान में नपति परिवर्तन में दर्शन उपयोग होता है, ऐसा कहा है। अभी इसके लिए अभी क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट था, गुणस्थान 4-5-6 में निर्विकल्प दशा में दर्शन उपयोग होता है, वहां भी नपति परिवर्तन होता है,
कौन सा 6-7-8
4-5-6
में पहले तो होती ही नहीं है वो दशा, माने
व्यक्ति परिवर्तन
वो तो नहीं,
वहाँ पर घटित नहीं होता है, ये व्यक्ति परिवर्तन का विषय श्रेणी में ही घटित होता है, और व्यक्ति परिवर्तन पहले तो होते ही है, चौथे पांचवें या पहले गुण स्थान में भी व्यक्ति परिवर्तन है, आपका उद्योग एक जगह से बदल के दूसरी जगह जा रहा है तो व्यक्ति परिवर्तन ही है।
अभी दूसरा भाग भी है, इस दर्शन उपयोग में सामान्य के ग्रहण में अतीन्द्रिय आनंद का ग्रहण सामान्य रूप से होगा तो उसका वंदन कैसे होगा, वेदन कैसे होगा,
वेदन,
हाँ, तो क्या असंख्यात समय इस सामान्य दर्शन उपयोग के समय आनंद का वेदन करता है?
देखिए, इसमें ये बात है कि दर्शनोपयोग में आनंद की बात नहीं है, दर्शनोपयोग जो है वो अनाकार उपयोग में ही है, और अनाकार उपयोग के दो भेद हैं, इन दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग अनाकार है, ज्ञानोपयोग साकार है, इससे आनंद का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये उपयोग अपनी आत्मा को विषय बनाता है उस समय आत्मा को विषय बनाने से आनंद की अनुभूति होती है, वो विषय दर्शनोपयोग में नहीं है। दर्शनोपयोग का विषय तो सिर्फ इतना है कि वो साकार है, अनाकार है, निर्विकल्प भी उसको कहा है, ज्ञान को सविकल्प कहा है, लेकिन हम तो आपको सिर्फ इतना इसके माध्यम से बताना चाहते थे कि आपको जो निर्विकल्पता का अभ्यास की बात है, तो ये दर्शनोपयोग के माध्यम से भी आप निर्विकल्पता का अभ्यास कर सकते हैं, और वो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति तो आपको आत्मा को विषय बनाने पर ही होगी। ये इसमें बात है, इसमें और भी कुछ
अगला प्रश्न है।
नहीं, ज्ञानोपयोग भी नहीं पंडित जी, उसमें भी दर्शनोपयोग माना है। माने एक दूसरी बात जो अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है कि अनुभूति के समय दर्शनोपयोग हो सकता है क्या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि अनुभूति का प्रारंभ वो साकार उपयोग से ही होता है, ज्ञानोपयोग से ही होता है, लेकिन उसके बाद में उसमें उपयोग बदल भी सकता है। वो उस समय व्यक्ति परिवर्तन होगा तो व्यक्ति परिवर्तन के समय में वो दर्शनोपयोग में भी जा सकता है और उपयोग बदल करके दूसरी जगह भी जा सकता है, जैसा कि वहां पर सातवें आठवें आदि गुण स्थानों में कहा है। लेकिन ये जो है उपयोग उस समय बाद में बदल सकता है, लेकिन प्रारंभ उसका साकार उपयोग में होता है, ऐसा शास्त्र का कथन है।
उत्तम जी, अगला सवाल, जीवन में प्रयोग पद्धति कैसे शुरू होवे, उदाहरण सहित समझाइए। और आगे पूछते हैं, विकल्प तो आएंगे ही, लेकिन उस अवस्था में सुख का वेदन कैसे हो?
सुख का वेदन, सुख, हाँ सुख। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस सुख का वेदन करना चाहते हैं वो सुख का लक्षण आपने समझा कि नहीं। यदि सुख का लक्षण समझा नहीं तो वेदन आप कर ही नहीं सकते। तो सुख का लक्षण तो ये है कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन, यानी आकुलता जहाँ ना हो उसका नाम लक्षण और सुख का लक्षण है। तो आप आकुलता तो कहाँ नहीं है, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लग्यो। और शिव मोक्ष का मार्ग जो है वो दर्शन ज्ञान चार्त्र रूप है, इन तीनों के अभेद रूप है। तो ये तीनों के अभेद रूप होने से वास्तव में निराकुल अगर कोई जगह है दुनिया में तो वो आत्मा है ना। आत्मा के स्वभाव में निराकुलता भरी पड़ी है, अब उसका वेदन अगर आप करेंगे तो आपके लिए निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। अब वेदन आपको तब होगा कि जो चीजें आकुलता के कारण बनती थी उनसे आपकी दृष्टि हटे और जो निराकुल स्वभाव है उस पर आपकी दृष्टि जाए। ऐसा भेद ज्ञान करती हुई दृष्टि क्रमशः पर का ज्ञान करके और उसमें मेरा सुख नहीं है वहां से दृष्टि हटा लेवे, और जहां अपना सुख है वहां की ओर बढ़े, तो उस बढ़ने में बीच में विकल्प आएंगे। मति ज्ञान के भी विकल्प आएंगे, श्रुत ज्ञान के भी विकल्प आएंगे। मति ज्ञान के विकल्प स्थूल होते हैं, श्रुत ज्ञान के विकल्प सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर होते हैं। तो वे विकल्प भी धीरे धीरे टूटते जाएं, और जहां विकल्प रहित होकर के आपका उपयोग जब अपने ज्ञान स्वभाव से ज्ञायिक स्वभाव से तन्मय होकर वेदन करेगा वहां निर्विकल्प सुख की उत्पत्ति होगी। और इसकी विधि यही है कि आप भेद ज्ञान कीजिए, और भेद ज्ञान में जो अपनी चीज नहीं वहां से दृष्टि हटाइए, और दृष्टि हटाकर अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि लगाइए, और जिन जिन ने उस आत्म स्वभाव पर दृष्टि लगाई उन सबको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है। और ये विधि सबको एक सी लागू होती है, किसी को कोई अलग हो ऐसा संभव नहीं, और काल उसमें कुछ करता नहीं। किसी भी काल में आप अनुभूति करोगे आपको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट।
भरत भाई, आपके लिए अगला सवाल, आपने ज्ञान प्रधान दृष्टि और दर्शन प्रधान दृष्टि की बात की, उसमें दृष्टि का मीनिंग ज्ञान उपयोग लेना है कि दर्शन उपयोग लेना है, या श्रद्धा गुण की पर्याय लेना है?
श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान है दर्शन उपयोग की बात नहीं, श्रद्धा गुण।
दृष्टि प्रधान ज्ञान कहेंगे आप तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय होगी कि ज्ञान गुण की पर्याय?
ये प्रश्न है राकेश जी का कि दृष्टि प्रधान ज्ञान है वो श्रद्धा की पर्याय है या ज्ञान की पर्याय है? दृष्टि प्रधान ज्ञान माने उसको ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं, वो प्रमाण ज्ञान को छोड़ करके ज्ञान कह दिया। दृष्टि प्रधान प्रमाण ज्ञान और ज्ञान प्रधान प्रमाण ज्ञान, इस प्रकार से दो प्रकार के ज्ञान है।
तो दृष्टि प्रधान को अध्यात्म ज्ञान प्रधान प्रमाण ज्ञान भी कह सकते हैं। जैसे 47 शक्ति जो है वो दृष्टि प्रधान ज्ञान का विषय, वो प्रमाण ज्ञान का विषय, दो को भिन्न भिन्न तरीके से देखो, शुद्ध द्रव्य और उसके आश्रय से होने वाली शुद्ध पर्याय, ये दो को भिन्न भिन्न तरीके देखो तो वो दृष्टि प्रधान प्रमाण ज्ञान है, अथवा तो छोट में देखो तो दृष्टि प्रधान ज्ञान का विषय है। और 47 नई जो है उसमें जो शुद्धाशुद्ध पर्याय शब्द जो प्रकट होती है उसका आधार जो आत्मद्रव्य है, तो उस आत्मद्रव्य को वो निश्चय नहीं का विषय है, और शुद्धाशुद्ध पर्याय जो प्रकट होती है वो व्यवहार नहीं का विषय है, वो ज्ञान प्रधान प्रमाण ज्ञान है।
देखिए जैसे मेरा ये दूसरा प्रश्न है कि दृष्टि प्रधान दृष्टि ये तो श्रद्धा उनकी पर्याय है, अब ज्ञान प्रधान दृष्टि ये श्रद्धा गुण की पर्याय है कि ज्ञान गुण की पर्याय है? ज्ञान प्रधान दृष्टि,
ज्ञान प्रधान दृष्टि, ज्ञान प्रधान में दृष्टि जो है वो तो अपने तिकाली द्रव्य पर ही जाती है।
अच्छा,
ज्ञान ज्ञान प्रधान से उस आत्मा को ग्रहण किया, दृष्टि प्रधान से जैसे वो दृष्टि निकलते है तो परिणामी निष्क्रिय शुद्ध होकर एक आत्मद्रव्य को ही ग्रहण करती है, तो उसको दृष्टि प्रधान कहा। पर ज्ञान जो है वो तो अनेकांतात्मक है, तो द्रव्य पर्यात्मक वस्तु को जैसा है ऐसा जानता है, वो जानता है फिर वो दृष्टि उसमें द्रव्य ऊपर चली जाती है, वो ज्ञान।
ज्ञान प्रधान दृष्टि नो विषय, ज्ञान प्रधान दृष्टि रजमानव दर्शन शक्ति की बात करी, એટલે આઈ થિંક તમે પહેલા જે કહેતા હતા એ પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રધાન દ્રષ્ટિનો વિષયની વાત છે એની અંદર, એટલે એમનો સવાલ એ છે કે દ્રષ્ટિનો વિષય થયો એટલે શ્રદ્ધાનો વિષય થયો,
એ મુખ્ય પ્રશ્ન,
જ્ઞાન પ્રધાન દ્રષ્ટિનો વિષય એ શ્રદ્ધાનો વિષય થયો।
हाँ, ज्ञान प्रधान में पूरा अपना जो ज्ञान मात्र भाव है उसकी एक प्रकार की श्रद्धा होती है, ज्ञान मात्र भाव जो है द्रव्य में गुण में और पर्याय में सब में ज्ञान मात्र भाव ही व्यापक है। जैसे अरियन के द्रव्य गुण पर्याय को जान के अपने आत्मा का जो द्रव्य गुण पर्याय जानता है, या तो एक ज्ञातृ तत्व है और ज्ञेय तत्व है, ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व माने क्या, एक ज्ञेय अपना आत्मा ही है, ज्ञाता भी अपना आत्मा है और ज्ञेय भी अपना आत्मा ही है, पर उसमें जो भी वर्ग में है लोकालोक ज्ञेय है वो भी उसमें ही जानने में आता है, वो अपने ज्ञातृ तत्व में ही वो ज्ञेय होते हैं, तो इस प्रकार से वो कौन से ज्ञेय में होते हैं, पर्याय रूप ज्ञेय में होते हैं, पर्याय जो है उसमें वो सब नियों का ज्ञान होता है, लोकालोक रूप नेय का ज्ञान वो पर्याय में होता है। तो ज्ञातृ तत्व माने वो द्रव्य गुण पर्यायत्मक अपना ज्ञातृ तत्व, ज्ञाता भी बोधे ज्ञेय भी बोधे और ज्ञाय भी बोधे, इस प्रकार से अपने आप अखंड अभेद एकात्म द्रव्य को, द्रव्य गुण पर्यायत्मक एकात्म द्रव्य को जैसा है ऐसा प्रतीत करना, वो ज्ञान प्रधान प्रतीत है दृष्टि।
अगला प्रश्न है उत्तम चंद जी के लिए, इसमें क्लैरिटी नहीं है बट जो मैं समझता हूं वो पढ़ूंगा। क्या ये सच है कि समय दृष्टि जीव मरने के बाद विग्रह विदेह क्षेत्र में नहीं
जाता,
नहीं जाते?
समय दृष्टि विदेह क्षेत्र नहीं जाता, अगर विदेह क्षेत्र जाना है तो भद्र मिथ्या दृष्टि के विदेह क्षेत्र जाना संभव है। समय दृष्टि का तो नियम से अगर आयु बंद पहले ना हुआ हो मिथ्या दशा में तो देव गति में ही जाता है, दूसरी कोई गति में नहीं जाती,
मनुष्य गति का बंद हो गया
और आयु बंद गई हो तो जिस प्रकार की आयु बांधी हो उस प्रकार से भोग भूमि में हो जाएगा,
मनुष्य गति में भोग भूमि में जाएगा और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है।
जीव देह परिवर्तन के समय विग्रह गति में कौन से रूप में होता है? जीव है, जीव देह परिवर्तन के समय विग्रह गति में कौन से रूप में होता है?
आकार, नई गति का के पुरानी गति का?
अभी देखना ये है कि विग्रह गति में वो किस गति के आकार का होता है। एक गत्यानुपूर्वी नाम का जो प्रकृति होती है उस प्रकृति के उदय में जिस पर्याय में वो जाने वाला है वो उस पर्याय रूप हो जाता है। कुछ और
बराबर, मैंने जिस साथ तो ये पंडित जी ने उत्तर दिया वो गलत है क्या? बोलो
पंडित जी ने वही घोड़ा है कि घोड़ा का रूप में जाने वाला है तो घोड़ा घोड़ा का आकार से मनुष्य
मुझे भी
डाउट
एक काम करो कन्फर्म हम कल बता देंगे
देखना
पड़ेगा
जानने का विषय है वो जैसे आगम में लिखा हुआ है वो अपने मोबाइल में
जाति स्मरण होने का कारण क्या हो सकता है?
सुनो
देखिए ये जाति स्मरण जो ज्ञान है वो वास्तव में देखा जाए तो मति ज्ञान का भेद है। किसका? मति ज्ञान का। जाति स्मरण मति ज्ञान में हुआ करता है और जनरली तो जो जाति ज्ञान होता है वो पूर्व पर्याय से संबंधित हुआ करता है। अंग्रेज में भी नहीं अधिकांश जो आगम प्रमाण देखने विशेष मिले वो पूर्व पर्याय से संबंधित ही वर्तमान पर्याय में जो याद आ जाती है उसको जाति स्मरण ज्ञान माने जन्म लिया जिस पर्याय में उसमें पूर्व पर्याय की कुछ चीजें याद आ जाती है वो जाति स्मरण ज्ञान है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया कि वो जो राजुल थी ना
राजमती
उनको नौ भाव का ज्ञान था समझ में तो वो नौ भाव का भी ज्ञान जो था वो पूरा ज्ञान पूर्व पर्याय हुआ था आगामी कभी भाई नैमी नाथ से नौ भाव तक उनकी प्रीति रही पूर्व पर्यायों में समझ में आएगी नया नहीं था। तो उससे भी हमें ऐसा लगता है कि जो ज्ञान होता है ये तुम्हारे से जाति स्मरण ज्ञान आगामी भाव का नहीं देखने में आया लिखा कदाचित कहीं लिखा हो तो फिर बताना तो उसको स्वीकार
ये तो स्मरण ना है जाति स्मरण माने वो पूर्व भाव की बात है वो स्मरण भाव है जो स्मरण है वो तो मति ज्ञान का भेद है जाति स्मरण है वो मति ज्ञान का भेद है शुद्ध ज्ञान का भेद नहीं है। शुद्ध ज्ञान में तो नहीं होती है द्रव्य नहीं होती है तो भूत का और भविष्य का वो शुद्ध ज्ञान भी जान सकता है मगर मति ज्ञान को जो जाति स्मरण भेद है वो तो पूर्व में जो भी बात बन गई हो वो ज्ञान की इस प्रकार की निर्मलता हो तो उसमें वो जानने में आ जाती है वो स्मरण में आ जाती है। जैसे अभी वो उसका दृष्टांत आता है जैसे कोई जीव को अभी 70 साल की आयु है तो वो 60 वर्ष पहले की बात याद कर सकता है ऐसा उसका ज्ञान का सोषम है। तो किसी की 10 साल की आयु हो तो उसको यदि 70 साल पहले की कोई बात याद आवे तो उसको पूर्व भोग में क्या था वो भी जानने में आता वो स्मरण की बात
लास्ट प्रश्न है राकेश जी के लिए जीवत्व और चित्त शक्ति में अभेदी अंतर स्पष्ट नहीं होता कृपया समझाइए।
देखिए जीवत्व में जीवत्व का संबंध जीवन से है जीने से है जिससे जिया जाए उसे जीव कहते हैं। ये जीव जीव की व्याख्या भी ये संक्षेप में ये मिलती है जो जीता है उसे जीव कहते हैं। तो ये इसका संबंध जीवन से है और चिति का संबंध चेतना से है। तो हमको जो जीने की एक भावना होती है उसका संबंध जीवत्व के साथ में है और जो हमारे में चेतना है वो उसका संबंध चेतना के साथ में चिति के साथ में है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो यहाँ पर जब जीवत्व का अर्थ बताया आचार्य देव ने तो उन्होंने उसमें चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति कहा उन्होंने उसमें जीवत्व में चेतना को भी शामिल किया है चेतना को भी शामिल किया है। तो चेतना के साथ में जो जीना है वो जीवत्व है और अकेला जो चेतना है वो चिति है ऐसा हम उसका अर्थ कर सकते हैं। और दूसरा जो है उसकी चिति शक्ति की जो व्याख्या की जो अजड़त्व आत्मिका है तो वो जड़ नहीं होती है ऐसा उसका वो तो एक्सप्लेनेशन है।
और जीवत्व में वो आत्मद्रव्य कारण
आत्मद्रव्य का कारण भूत जो है वो जीवन उसको मिलता है इसलिए वो जीवत्व शक्ति का कार्य है
वो अस्थि से शक्ति में अस्थि से बात है।
हाँ ये बात भी है चेतना चिति में जो है वो नास्ति से बात की गई है और जीवत्व में अस्थि से बात की गई
है। इसमें दूसरा बात है राकेश जी आपके लिए जब सब पुरुषार्थ और निर्णय ज्ञान ही करता है तो फिर श्रद्धा सम्यक होने पर ही ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों कहते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ज्ञान और श्रद्धान, जब हम अकेले ज्ञान और श्रद्धान की बात करते हैं तो ज्ञान कारण है और श्रद्धान उसका कार्य है, लेकिन जब हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। असल में क्या होता है कि हमने जो ज्ञान, ज्ञान के बिना तो श्रद्धान होता ही नहीं है। समय सार कहता है मोक्षवार प्रकाशक में, टोडरमल जी बहुत कह रहे हैं कि ज्ञान जानेगा नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा, गधे के सिंह के श्रद्धान के समान वगैरह वगैरह बहुत सी बातें कही। तो यहाँ पर जाने बिना श्रद्धान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जानना यथार्थ हुआ, तुम्हारा जानना सम्यक हुआ कब कहलाएगा? यदि उसके रिजल्ट में सम्यक दर्शन हो तो सम्यक दर्शन के कारण से ज्ञान में सम्यक ज्ञान का आरोप आएगा, और यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे ज्ञान में सम्यक ज्ञान का आरोप नहीं आएगा। इसलिए जो है सम्यक साथे ज्ञान जो होता है उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो उसमें क्या कारण है कि उसको सम्यक ज्ञान कहा गया, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो सम्यक दर्शन पहले हुआ और सम्यक ज्ञान बाद में हुआ, हुआ दोनों एक समय में,
फिर भी
जो है कारण कार्य यदि देखा जाएगा तो वो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। ऐसा
थैंक यू ऑल ऑफ यू।
चलो आइए एंजॉय
के ज्ञान से सोझे लो गालो, सोमाई मस्तक नमो सदा नित मूलो।
नो वर्ड नो गॉड।
स्वामी जिनवाणी माता की
अभ्यास करेगा तो वो अंगली उंगली भावों में उसी जाति के बनाने